الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ حشر کی تفسیر ہم اس کلاس کے اندر آج کل پڑھ رہے ہیں. اس میں شروع کی جو پانچ آیات تھیں ان کی کافی تفصیل حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرفت القرآن کے اندر لکھی ہے، تو وہ ہم نے الحمدللہ پچھلی کلاس میں پڑھ کر کے مکمل کر لی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ حشر نازل ہوئی تھی قبیلہ بنو نظیر، جو کہ یہود کا ایک قبیلہ تھا. تو اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاہدہ امن تھا، اس معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزی کری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آپ کو اطلاع دے دی. تو پھر یہ معاہدہ ختم کر دیا گیا اور اس کی پھر ان کو سزا یہ دی گئی کہ ان کی جلاوطنی کا حکم جاری کیا گیا. تو اس کے تحت ہم نے بڑی امپورٹنٹ باتیں پڑھ لی ہیں. آخری بات اس میں جو تھی وہ یہ تھی کہ یعنی جب مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو نظیر کے قلعوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو چونکہ حملہ کرنا تو نہیں تھا لیکن وہاں پہ جا کر کے انہوں نے قیام کیا تھا، پڑاؤ ڈالا تھا، اور پھر وہاں انہوں نے مسلمانوں میں ایک علمی اختلاف ہوا تھا، اجتہادی اختلاف ہوا تھا کہ کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ان کے درخت جلانے چاہیے تاکہ ان کے اوپر سائیکولوجیکل پریشر ڈالا جا سکے. ٹھیک ہے، تو دوسرے مسلمانوں نے، یعنی دو گروہ بنے تھے، دوسرے گروہ نے صحابہ کرام کے اس بات سے اختلاف کیا تھا کہ نہیں، انہوں نے تو یہاں سے چلے ہی جانا ہے اور فتح مسلمانوں کو ہونی ہے. یہ بات ان کو پتہ چل چکی تھی، مسلمانوں کو اندازہ تھا اس بات کا کہ فتح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی ہوگی. تو انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا کہ بھائی اگر درخت جلا دیں گے نا تو یہ درخت تو ہماری ہی ملکیت میں آنے، مسلمانوں کی ملکیت میں آنے. ٹھیک ہے، تو اب مسلمانوں کا نقصان ہوگا ان کو جلا کر کے. تو یہ رائے کا اختلاف ہو گیا تھا. تو اس رائے کا اختلاف کا علماء کرام کو ہمیشہ سے حق رہا ہے. یہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا اور آج کے دور کے اندر بھی یہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کا حق جو ہے وہ عوام الناس کو نہیں ہوتا بلکہ علماء کرام کو اس کا حق ہوتا ہے، کیونکہ اجتہاد کی صلاحیت یہ علماء کرام کے پاس ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عوام الناس کے پاس اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی ایسے معاملات کے اندر. ٹھیک ہے، البتہ جیسے کہ آپ کو پچھلے ہفتے مثال دی تھی کہ پچھلی کلاس میں کہ اگر کچن کے معاملات ہیں تو کچن کے معاملے میں عالم کون ہوتا ہے؟ وہ گھر کی عورت ہوتی ہے. تو چونکہ وہی عالمہ ہوتی ہے اپنے گھر کے کچن کی، تو اس معاملے میں اجتہاد کرنا جو ہے وہ اس کی صلاحیت اس عورت کے پاس ہوتی ہے. لیکن یہ کچن کے معاملات تو نہیں ہے نا، یہ جو ہے وہ کسی چھوٹے سے گھر کے معاملات تو نہیں ہے نا، یہ تو پورے یعنی ایک لشکر کشی کا معاملہ تھا. تو اس کے اندر بڑے اکابرین کو اجتہاد کی صلاحیت حاصل ہے، ہر ایرے غیرے کو یا ہر عوامی کو اجتہاد کی صلاحیت حاصل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اختلاف ہونا جو ہے نا، علماء کرام کے درمیان اختلاف کا ہونا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اور کوئی جو ہے وہ الزام تراشی علماء کے اوپر کرنے کا کاز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کر کے ہم یعنی تھوڑا سا خلاصہ بیان کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، کہ جو مال کے لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ان میں سے، فما اوجفتم علیہ، پس نہیں تم نے دوڑائے اس پر، من خیلن ولا رکابن، اپنے گھوڑے और अपने ऊंट, ना अपने घोड़े तुमने दौड़ाए थे ना अपने ऊंट दौड़ाए थे। क्या मतलब कि ये जो बनू नजैर के ऊपर जो मुसलमान मुसलमानों ने एक तरह से लश्कर कशी करी थी ना, तो ये बस इतना किया था कि मदीना मुनव्वरा, जो उस जमाने में मदीना मुनव्वरा था, वो कितना बड़ा था, जितनी आजकल की मस्जिद नबवी है ना, इतना बड़ा मदीना मुनव्वरा था उस जमाने का, ठीक है, यानी शहर इतना बड़ा था, ठीक है। जो जन्नतुल बकीर का कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान शहर के बाहर था, ठीक है। तो जितनी आजकल आप देखते हैं ना मदीना या मस्जिद नबवी की जो सहन जहां तक पहुंचता है, तो उसके बाद फिर जन्नतुल बकी की सीढ़ियां शुरू होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक सहन तक शहर था, ठीक है। और उसके बाहर जो है ना, वो बल्कि शहर के घर भी जो थे ना, वो भी मस्जिद नबवी की जो बिल्डिंग है, जो करंट बिल्डिंग है मस्जिद नबवी की, सिर्फ वहां तक घर थे। उसके बाद एक खुला मैदान था जन्नतुल बकी तक, वो मैदान भी शहर का हिस्सा ही समझा जाता था। लेकिन मैदान के खत्म होने के बाद जो बकी का कब्रिस्तान शुरू होता है, यहाँ पे सबसे पहले उम्महातुल मोमिनीन और जो बिनातुल सालेहात हैं, नबी सलाम की बेटियां, उनकी कब्रें हैं, राइट। तो जन्नतुल बकी वहां से शुरू होता है। तो यहाँ से यानी शहर खत्म हो जाता था और कब्रिस्तान शुरू हो जाता था। कब्रिस्तान शहरों के अंदर नहीं हुआ करते थे, ठीक है, कब्रिस्तान हमेशा शहरों के बाहर हुआ करते थे, जैसे कि जन्नतुल बकी भी। अच्छा, इस साइड पे शहर यहाँ तक था, और दूसरी साइड पे शहर जो है वो वहां तक था जहां तक अभी मस्जिद नबी का सहन है। इस सहन के बाद क्या चीज आती है, इस सहन के बाद दो मस्जिदें आती हैं, ठीक है। उनमें से एक मस्जिद जो है ना, वो ईदगाह की मस्जिद है, ईदगाह की मस्जिद। ये ईदगाह की मस्जिद क्यों है, क्योंकि सहाबा कराम ईद की नमाज पढ़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहर से बाहर निकलते थे और उस मकाम पर ईद की नमाज पढ़ते थे, वहां पर एक मस्जिद बना दी गई, ठीक है। तो वो जो जगह है वो भी शहर से बाहर है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली पूरा का पूरा कॉम्पाउंड है मस्जिद नबी वाला ना, जो कि समझ लें कि उस जमाने का शहर था। ये जो बनू नुज़ैर के किले थे, या एक किला था या एक से ज्यादा किले थे, ये इस जगह से 2 मील के फासले पर थे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को वहां पर भेज दिया था। अब ये वहां पर जाकर के सिर्फ कयाम यानी पड़ाव डाल लिया था इन्होंने, ठीक है, और कुछ लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं हुई थी। ज्यादा से ज्यादा कुछ सहाबा ने दरख्त जलाने का काम किया, तो भी दरख्त जलाना कोई इंसानों से लड़ना को थोड़ी होता है, ठीक है। तो इस वजह से ना यहाँ पर कोई ना घोड़े दौड़ाए गए थे, ना ऊंट दौड़ाए गए थे, ना जो है वो तलवारबाजी हुई थी, कुछ भी नहीं किया था सहाबा ने, ठीक है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यही फरमा रहे हैं, मा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन, ठीक है, कि तुमने तो ना अपने कोई घोड़े घोड़े दौड़ाए थे और ना तुमने जो अपने ऊंट, रिकाब से मुराद यहाँ पर ऊंट है। वला किन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशाउ, लेकिन अल्लाह ताला मुसल्लत कर देता है अपने रसूल को, मुसल्लत से मुराद गलबा दे देता है अपने रसूल को, अला मन यशाउ, जिसके ऊपर वो चाहे, ठीक है। तो अल्लाह ताला को तुम्हारी लड़ाइयों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो है ना वो अपने यानी वेपन्स को इस्तेमाल करने की, बहादुरियां दिखाने की अल्लाह ताला को हाजत नहीं है इसकी, ठीक है। हाँ, जब हुक्म दिया जाता है तुम्हें कि तुम लड़ो जा करके, तो तुम अल्लाह के हुक्म की वजह से लड़ते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे लड़ने की वजह से फतह मिलेगी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बजाहिर जो है वो किंडरगार्टन लेवल की बात है, लेकिन बड़े बड़े 50 50 60 60 साल के बुजुर्गों को भी ये बात समझ में नहीं आती कि हम जो मेहनत करते हैं वो क्यों करते हैं, राइट। चाहे बच्चे हो, वो स्कूल के अंदर जो मेहनत करते हैं पढ़ाई की मेहनत, नौजवान हो यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के जो मेहनत करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए जो मेहनत करते हैं, चाहे जो जॉब में आ जाते हैं, जॉब में आकर के जो मेहनत करते हैं, राइट, सुबह शाम जो है वो दफ्तर के अंदर लगाते हैं और साइट के ऊपर लगाते हैं और लंबे लंबे सफर करके जो है वो यानी काम कर रहे होते हैं, तो ये सारी मेहनतें आप क्यों कर रहे होते हैं? क्या इसलिए कर रहे होते हैं कि ये मेहनत करेंगे तो आपको खाना मिलेगा, आपको रिस्क मिलेगा, आपको दुनिया में इज्जत मिलेगी? नहीं, इसलिए नहीं। अगर कर रहे हैं इस नीयत के साथ तो गलत कर रहे हैं कि मेहनत करेंगे तो रिस्क मिलेगा, ठीक है। अगर ये नीयत है तो ये गलत नीयत है, क्योंकि मेहनत से रिस्क का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। रिस्क की तकसीम अल्लाह ताला ने अपने हाथों में रखी है, कोई मेहनत करे या ना करे, अल्लाह ताला ने रिस्क पहुंचाना है जितना अल्लाह ताला ने उसके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मेहनत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसी तरीके से जो दुनिया के अंदर इज्जतें मिलती हैं, जो कामयाबियां मिलती हैं, इसका मेहनत से ताल्लुक नहीं है। फिर क्यों क्यों करते हैं हम? हुक्म की वजह से करते हैं, हुक्म की वजह से। अल्लाह ताला ने मेहनत करने का हुक्म दिया है नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से, राइट। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया अलकासिब हबीबुल्लाह कि मेहनत करने वाला, हाथ से मेहनत करने वाला, ये अल्लाह ताला को महबूब है, पसंद है। तो एक ईमान वाला इस वजह से मेहनत करता है ताकि उसको अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाए। अल्लाह ताला चाहते हैं मेहनत करना, मेहनत करवाना हमसे, ठीक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेहनत करके दिखाई तो ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गई कि मेहनत करनी है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं कॉलेज के या स्कूल के बच्चे, तो वो क्यों मेहनत करते हैं? उनके वालिदैन उनको हुक्म देते हैं मेहनत करने के लिए, तो वो अपने वालिदैन की अतात में मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बहुत जरूरी है हमारे जहन के अंदर, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है नहीं हमारे जहन में, ठीक है। हम कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन हम फॉर द रॉन्ग रीजंस वो काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो हमें फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, कभी दुनियावी नुकसान भी उठाना पड़ता है और दीनी नुकसान तो डेफिनेटली उठाना पड़ता है, इसलिए कि हमारी नीयतें खराब हुई हुई होती हैं, गलत नीयतें हुई हुई होती हैं, तो इस वजह से दीनी नुकसान तो डेफिनेटली हमें उठाना पड़ रहा होता है, लेकिन अक्सर हम दुनियावी तौर पर भी नुकसान उठा जाते हैं गलत नीयत की वजह से, ठीक है। तो देखें यहाँ पर अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वलाकिन अल्लाह युसल्लित रसूलहु अला मन यशा। रिस्क के बारे में क्या है? अल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ मिन इबादिही बगैर हिसाब। अल्लाह ताला जिसको अपने बंदों में रिस्क देना चाहता है उसको रिस्क देता है, ठीक है, जिसको देना चाहता है अल्लाह ताला देता है। इसका भी ताल्लुक जो है वो आपके घोड़े दौड़ाने से नहीं है, आपके ऊंट दौड़ाने से नहीं है, आपके जो है वो यानी कार्रवाई डालने से नहीं है। इसका ताल्लुक अल्लाह ताला की रजा के साथ, अल्लाह ताला की चाहत के साथ है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला रिमाइंड करवा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को जहां चाहते हैं फौकियत दे देते हैं, गलबा दे देते हैं। तुम्हारे घोड़े दौड़ाने और ऊंट दौड़ाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम घोड़े ऊंट दौड़ाते हो ना, जब भी दौड़ाते हो तो वो तुम अल्लाह की अतात में दौड़ाते हो, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में तुम घोड़े दौड़ाते हो, इसकी वजह से तुम्हें आखिरत का सवाब मिलता है, आखिरत का अजर मिलता है, ठीक है। कोई सवाल हो किसी को तो प्लीज जरूर से पूछ लिया करें। ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير। और अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादर है, कुदरत रखने वाला है, ठीक है। अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो हमारी मेहनतों की मोहताज नहीं है, ठीक है, हमारी कार्रवाइयों की, और बल्कि हमारी अतात की भी मोहताज नहीं है। अगर हम अल्लाह ताला की अतात करते हैं तो अपने फायदे के लिए करते हैं, अल्लाह ताला की मदद करने के लिए नहीं अतात करते कि अल्लाह ताला को मदद करेंगे तो फिर कोई काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा, हरगिज नहीं। मा अफा अल्लाह, दीनी मामलात में मेहनत करना कैसा है? सेम प्रिंसिपल, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम प्रिंसिपल है। अतात में मेहनत कर रहे होते हैं, राइट, अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने दीन के ऊपर जो है वो यानी अपने आप को कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, राइट, कि तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ, इस वजह से दीनी मामले अल्लाह ताला का हुक्म है। ये कू अनफुसकुम, कू जो है ये एक हुक्म का सीगा है, कमांड टेंस है ये, सही है। तो सारी काम जो होते हैं ना वो अतात की वजह से किए जा रहे होते हैं और रिजल्ट्स के लिए, दुनिया के रिजल्ट्स के लिए नहीं किए जा रहे होते, ठीक है। ये दुनिया के रिजल्ट्स के लिए जब काम किए जाते हैं ना, तो जरा आप में से कोई बताए अगर कि यहूदियों के साथ जो हमने के बारे में जो हमने बात बताई थी हजरत मुसी शफी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर से ही, कि उन्होंने भी यही हरकत करी थी, गलत इंटेंशंस की वजह से उन्होंने एक काम किया था तो फिर वो काम जो है वो उनका खराब हो गया था। किसी को याद है वो क्या बात हुई थी यहूदियों के बारे में? किसी को याद है? पिछली दो क्लासेस के अंदर ये बात दो दफा रिपीट हुई है कम से कम। कमिंग टू मदीना, नहीं कमिंग टू मदीना नहीं, वो गलत इंटेंशन से मदीना नहीं आए थे, ये तो मैंने आपको कहा था ना, वो तो सही इंटेंशन से मदीना आए थे, ठीक है। फिशिंग ऑन सैटरडे, लाहौला वाला कुआत, ये कब बात हुई भी सैटरडे की फिशिंग की? नहीं, हम इस सूरह हशर की तफसीर की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर यहूदियों की इंटेंशंस की खराबी कैसे जाहिर हुई थी, इनके रूहानी बीमारियों की जो जो की जो इफेक्ट इनके ऊपर हुआ था वो कैसे जाहिर हुआ था? नबी फ्रॉम बनी इस्माइल? नहीं, देखें दुनिया की मोहब्बत ना, तो दुनिया की मोहब्बत की मैनिफेस्टेशन कैसे हुई थी, कैसे जहूर हुआ था इसका? लेकिन पीछे जरा देख लें, किताब में भी पता होना चाहिए कहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो हाँ, पेज नंबर 358 खोलें, अगर किसी के पास किताब नहीं है तो सख्त किस्म की डांट पड़नी चाहिए उस वक्त उसको, ठीक है? क्यों किताब नहीं है? किताब होनी जरूरी है, हम तो आपको लिंक भी भेज देते हैं, तो लिंक को तो कम से कम क्लिक करके खोल लेना चाहिए किताब को। बहरहाल, अगर किसी के पास नहीं है तो उसका मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह के हवाले। तो जिनके पास है वो पेज नंबर 358 को खोलें, ठीक है? 358, ये बेसिकली मारिफो मसाइल जो शुरू होते हैं ना, पिछली 5 आयात के, पहली 5 आयात के, ये मारिफो मसाइल का पहला पेज है, ठीक है? तो अगर आपका दूसरी वाले प्रिंटिंग है तो उसमें पेज नंबर ये नहीं होगा, लेकिन मारूफ मसाइल का पहला पेज है, उसमें जो पहला पैराग्राफ है उसकी फोर्थ लास्ट लाइन, ठीक है? सूरह हशर की खसूसियात और कबीला बनू नुज़ैर की तारीख, ये उसका टाइटल है पहले पैराग्राफ का। उसकी फोर्थ लास्ट लाइन में क्या लिखा था हजरत ने कि चले फोर्थ लास्ट से भी लेट्स से सिक्स लास्ट लाइन से पढ़ते हैं कि मगर दिल में उनके अक्सर लोग, यानी जो कबीला बनू नुज़ैर के यहूदी थे, तो उनके बारे में लिख रहे हैं कि दिल में उनके अक्सर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरुल अंबिया होने को जानते पहचानते थे, और गजवाए बदर में मुसलमानों की हैरत अंगेज फतह और मुशरिकीन की शिकस्त देखकर उनका ये यकीन कुछ और बढ़ा भी था। यानी अपनी तौरात में पढ़ करके उनको पहले यकीन था कि यही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और फिर जब बदर में उन्होंने नबी अलैहि सलाम की कामयाबी को देखा, हैरत अंगेज तौर पे कामयाबी हुई कि बगैर तलवारों के, तीरों के, नेजों के, राइट, 1,000 ऐसे बंदे जो के असलहे में डूबे हुए थे उनके खिलाफ 313 निहत्ते लोगों को अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। तो इस हैरत अंगेज फतह को देख करके इनका यकीन और बढ़ गया था कि नबी अल्लाह के रसूल हैं। इसका इकरार उनकी जुबानों से सुना भी गया, मगर इस जाहिरी फतह और शिकस्त को हक और बातिल के पहचानने का मेयार बना लेना ही एक बोधी और कमजोर बुनियाद थी, ठीक है? ये है असल लाइन कि दुनिया की फतह, दुनिया की शिकस्त, इसको हक और बातिल का मेयार बना लेना कि जिसको दुनिया में फतह मिली है वो हक पर है और जिसको दुनिया में नाकामी मिली है वो हक पर नहीं है, ये तो मेयार है ही नहीं। मेयार क्या है? मेयार तो आखिरत है। आखिरत की कामयाबी किसको मिल रही है, आखिरत की नाकामी किसको मिल रही है, ये मेयार है, राइट? तो इन यहूदियों ने जो मेयार बनाया था दुनिया को, दुनिया की कामयाबी, ये बुनियाद ही गलत थी। तो इस वजह से फिर क्या अल्लाह ताला ने इनके साथ किया, इनके साथ ये किया कि नतीजा ये हुआ कि गजवाए उहद में जब इब्तिदाअन मुसलमानों को शिकस्त हुई, कुछ हजरात सहाबा शहीद हुए, तो इनका यकीन मुतजलजल हो गया, सही है? और इसके बाद उन्होंने मुशरिकीन मक्का के साथ साजबाज शुरू कर दी, ठीक है? तो गज़वाए उहद की जाहिरी शिकस्त जो हुई थी उसको देख करके इनका जो ये यकीन था ना वो कैसे मुतजलजल हो गया, इसलिए कि इनके इस यकीन की बुनियाद दुनिया की मोहब्बत थी, दुनिया की कामयाबी थी, राइट? और दुनिया की मोहब्बत जिस भी नेकी के काम की बुनियाद हो, वो नेकी का काम आगे नहीं चल पाता, वो नेकी का काम खत्म हो जाता है, उसके अंदर से हवा निकल जाती है, उस नेकी के काम से हवा निकल जाती है, वो खत्म हो जाता है, वो यू टर्न बन जाता है। यू टर्न, जैसे पिछले दिनों बात भी हो रही है कि 2-3 मजालिस के अंदर बात हुई है, सारे जुमे का बयान इस टॉपिक के ऊपर किया है कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर इतनी ज्यादा दीनदारी नजर आनी शुरू हो गई थी, अब वो सारी की सारी दीनदारी किधर गायब हो गई, कहाँ चली गई वो सारी की सारी दीनदारी, राइट? ऐसे कैसे हवा हो गई वो दीनदारी? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो जो दीनदारी थी वो दुनिया की मोहब्बत की वजह से दीनदारी थी। जैसा कि इन यहूद ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो यकीन किया था वो दुनिया की मोहब्बत की वजह से यकीन किया था कि दुनिया के अंदर इनको कामयाबी मिल रही है, दुनिया में कामयाबी मिल रही है, इस वजह से ये अल्लाह के रसूल हैं। ये गलत बुनियाद थी, ठीक है? तो जब वो ओहद के अंदर फिर अल्लाह ताला ने इनके इस गलत यकीन का भांडा फोड़ दिया, ठीक है, और इनका यकीन मुतजलजल हो गया, फिर ये वापस अपनी बेयकीनी की कैफियत के अंदर चले गए। इसी तरह से हमारे साथ भी होता है, हम कभी इबादत नहीं कर रहे होते हैं, नहीं किया कर रहे होते हैं, लेकिन असल में बैक ऑफ द माइंड छुपा हुआ वहां हमारे दिल के अंदर छुपी हुई जो जो नीयत होती है ना, वो दुनिया की मोहब्बत होती है, वो आखिरत की मोहब्बत नहीं होती है। इसी वजह से जब हमें दुनियावी मामलात के अंदर नाकामी होती है तो हमारी ये इबादतें ठप हो जाती हैं सारी की सारी, ठीक है? फिर ये जोश और जज्बा इबादतें करने का ये खत्म हो जाता है। ये पहचान है इस बात की कि हमारी इबादतें दुनिया की वजह से हो रही थी, ये है पहचान इस बात की, ठीक है? अब अगर कोई हमसे पूछे कि भाई आप क्या वाकई इस नियत से इबादतें कर रहे थे, तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैं कोई थोड़ी दुनिया के लिए इबादतें कर रहा था, मैं तो इबादतें उसलिए कर रहा था जिस वजह से इबादतें की जाती हैं, ठीक है? जिस तरह जिस वजह से सारे लोग इबादतें करते हैं तो मैं भी उसी वजह से इबादतें कर रहा था, ठीक है? लेकिन ये बात गलत होती है, ठीक है? देखें, ये जो है ना दुनिया के लिए दीन, दुनिया के लिए दीनदारी, राइट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रियाकारी। क्या कहते हैं इसको? रियाकारी। हम समझते हैं रियाकारी का सिर्फ मतलब ये है कि लोगों को दिखाने के लिए इबादत की जाए, बस सिर्फ ये मतलब है रियाकारी का। और चूंकि हमने ऐसा नहीं किया होता ना, हमने लोगों को दिखाने के लिए इबादत नहीं की होती है, तो हम ये समझते हैं कि हमने रियाकारी नहीं करी है। हालांकि रियाकारी का ये मतलब नहीं है सिर्फ कि लोगों को दिखाने के लिए इबादत की जाए, रियाकारी का मतलब ये है दुनिया के लिए इबादत की जाए, चाहे वो लोगों को दिखाने की शक्ल में हो, चाहे वो कोई दुनियावी मफाद हासिल करने के लिए हो, राइट? इसलिए इबादत की जाए, इसको रियाकारी कहते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने रियाकारी के बारे में क्या फरमाया है? रियाकारी छुपा हुआ शिर्क है, छुपा हुआ शिर्क, राइट? छुपा हुआ शिर्क का क्या मतलब? कि ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जज्बा है जो कि इंसान के दिल के अंदर बहुत गहराई में कहीं जाके छुपा हुआ होता है। दूसरों को तो क्या समझ में आएगा, ये उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रहा है, कि वो दुनिया की मोहब्बत की वजह से अमाल कर रहा है, वो खुद भी नहीं जानता इस बात को कि वो रियाकारी कर रहा है, ठीक है? तो इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि वो जो इबादतें कर रहा है ना वो दुनिया के लिए कर रहा है, लेकिन भांडा फूटता है ना जब, तब पता लग जाता है, और उसको पता नहीं लगता, उसको उस वक्त भी नहीं पता लगता, ये भी उस वक्त उसको पता लगता है कि जो के इसका रूहानी मुआलिज होता है ना, उसको ये बात पता लगती है। वो इसको बताता है कि देखो तुम इतनी इबादतें कर रहे थे, इतनी इबादतें कर रहे थे, लेकिन जब तुम्हें दुनियावी मामले में नाकामी हुई उसके बाद तुम्हारी इबादतें क्यों खराब हो गई? ये इस बात की दलील है कि तुम्हारी इबादतें दुनिया की वजह से थी, अगरचे कि तुम इस बात को तस्लीम भी नहीं कर रहे हो, अगरचे तुम इसको तस्लीम भी नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये फेल जो है ना, ये इस बात पर दलील है कि तुम्हारी इबादतें दुनिया की खातिर हो रही थी, क्योंकि दुनियावी नाकामी के तुम्हारी इबादतें ठप हो गई हैं, राइट? ये इस बात की दलील है। बात समझ में कुछ आ रही है? कोई सवाल है, कुछ अनक्लियरिटी? ये बुनियादी बात है, ये तो हमारी इबादतों की नीयत क्या है, क्यों कर रहे हैं हम सारी इबादतें, ठीक है ना? तो ये नफली बातें नहीं है ना, ये तो फर्ज के दर्जे में है ना, क्योंकि नीयत का खालिस होना, इखलास तो फर्ज है, ये कोई नफिल को थोड़ी है कि हाँ भाई अगर दिल चाहेगा तो इखलास कर लेंगे, नहीं दिल चाह तो ऐसे ही करते रहेंगे भेड़ चाल की तरीके से, राइट? ये तो कोई नफिल बात तो नहीं है, ये तो फर्ज है ना, इखलास तो फर्ज है ना, तो इस इखलास को पहले तो समझेंगे तब कहीं जाकर के इखलास मिलेगा ना, अगर समझा ही नहीं कि इखलास होता क्या है तो फिर कैसे? और फिर इखलास को मजीद समझने के लिए उसका जो ऑपोजिट है रियाकारी, इसको भी समझना जरूरी है, सारी जिंदगी हमारी इस चक्कर में गुजर जाती है कि रियाकारी का मतलब तो यह है कि दूसरों को दिखाने के लिए इबादत की जाए, और वो तो मैं करता नहीं हूं, तो मैं तो रियाकारी से पाक हूं। हालांकि ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर भी रियाकारी छुपी हुई होती है, लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमारे अंदर छुपी हुई है। मेरे पूछने का मकसद ये था कि दीनी मामलात में मेहनत करना कैसा है, यानी दर्जात को अल्लाह ने बुलंद करना है, जिसका चाहें और जितना चाहें, फिर मेहनत करें क्यों? नहीं तो आप फिर आंखें बंद कर लें और सर को झुका लें, आंखें बंद कर लें और दुनिया दुनिया में जो कुछ है उसे हटकट कर अल्लाह ताला की याद में डूब जाएं, और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि जो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है। तो अब आप इस वक्त से आप बैठ जाएं मुरातमे में और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। खाना भी अल्लाह ताला चाहेंगे तो आपके पेट में खुद ही उतर जाएगा, ठीक है? पानी भी खुद ही उतर जाएगा पेट के अंदर, और बाकी सब कुछ भी खुद ही हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है, ठीक है? तो भाई ये मतलब कोई थोड़ी था इस बात का यार, है? खाना भी नहीं खाइएगा इसके बाद से, ठीक है? नहीं ये सब बात ऐसे नहीं होती, जरा बात समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है ना, कहीं की कहीं पे जाकर के मिला देना, इससे तो फायदा नहीं होता ना। अगर इतनी इबादत के बावजूद कुछ ना मिले तो फिर क्या करें? नियत को सही करें, ठीक है? जो नियत खराब चल रही थी वो खराब नियत जो है ये गुनाह थी, ठीक है? कुछ ना मिले, ये क्या मतलब कुछ ना मिले? दुनिया में कुछ ना मिले, क्या कहना चाह रहे हैं? आखिरत में कुछ ना मिले या दुनिया में कुछ ना मिले, इसको जरा क्लियर करें पहले इस बात को, फिर उसके बाद इसका जवाब, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। इतनी सारी इबादतों के बावजूद कुछ ना मिले, कहाँ कुछ ना मिले, दुनिया में या आखिरत में? तो सवाल पर मुकम्मल करें, उसके बाद तो जवाब मिलेगा। दुनिया के लिए कर रहे थे तो दुनिया के लिए करना तो गुनाह था, क्योंकि दुनिया के लिए इबादतें करना ये बदतरीन गुनाह है, ठीक है? तो गुनाह कर रहे थे तो उस गुनाह के ऊपर फिर तौबा करना चाहिए, तौबा करने की ज़रूरत है, और नीयत को दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है, ठीक है? और अगर आखिरत के लिए कर रहे थे तो फिर दुनिया में कुछ मिले या ना मिले उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आखिरत के लिए कर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में मिले या ना मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और अगर दुनिया के लिए कर रहे थे तो तौबा करने की जरूरत है इस अजीम तरीन गुनाह से, ठीक है? क्लियर हुई ये बात? आपके सवाल का जवाब मिला आपको? दोनों सूरतों में आप, यानी आपने लिखा तो नहीं था कि दुनिया के लिए या आखिरत के लिए, दुनिया में मिले या आखिरत में मिले, ये तो आपने नहीं लिखा था, लेकिन मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज आपके सामने जवाब की शक्ल में फिर रख दी हैं। तो अगर ना बात क्लियर हुई हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, अभी ना पूछो तो बाद में भी पूछ सकते हैं ना, व्हाट्सएप तो अल्लाह ताला ने दिया है ना। रियाकारी को ख़त्म करने के असबाब, माशाल्लाह असबाब क्या है रियाकारी को ख़त्म करने के? सबसे पहला सबब जो है वो तौबा है, ठीक है? इस रियाकारी से तौबा करना। दूसरा सबब यह है कि अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मांगना, ये अल्लाह मुझे इखलास अता फरमा दीजिए। ये इखलास अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और ये नेमत मांगने से मिलती है, ये मांगने वाली नेमत है, ठीक है? तो इखलास के लिए अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगने की ज़रूरत होती है। ये फ्री नेमत नहीं है, जैसे हवा पानी जो आपको फ्री मिल जाता है ना, आगे इसका भी जिक्र आ रहा है कौन कौन सी फ्री नेमतें अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं, ठीक है? इखलास फ्री नेमत नहीं है, इसके लिए अल्लाह ताला से मांगना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दुआ मांगने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने मामलात को जिनके साथ इस्लाही ताल्लुक है बिल्कुल खोल खोल करके बयान करना, क्लियर हो जाना बिल्कुल उनके सामने, कोई जो है वो ढका छुपा मामला नहीं रखना अपने शेख के सामने, ठीक है? ताकि वो आपकी जो भी नीयत की खराबी आपके अंदर नज़र आए वो आपको एक्सप्लेन कर दे कि जी आप ये काम गलत नीयतों से करना है, इस नीयत से आपको ये काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए, वो आपको आईना दिखाए, ठीक है? और फिर उस आईने के अंदर आप अपनी इसलाह कर सकें, अपनी नीयत को दुरुस्त कर सकें, ठीक है? ये तीन बातें आपको बताई हैं। पहली जो है वो अगर इखलास की कमी की खराबी है तो उसके ऊपर तौबा करना, दूसरी अल्लाह ताला से दुआ करना इखलास के लिए, और तीसरी चीज़ ये है कि अपने शेख के सामने जो है वो बिल्कुल ऑनेस्टली बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी के साथ और सच्चाई के साथ जो है वो अपने हालात रखना, और वो फिर जैसे जैसे इसलाह करें फिर उस इसलाह के ऊपर फिर अमल करने की कोशिश करना, ठीक है? तो ये जो है वो दुनिया की मोहब्बत के बारे में अहम तरीन बातें थीं जिनके ऊपर हमारे सारे के सारे अमाल डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर हमने दुनिया की मोहब्बत से पीछा नहीं छुड़ाया तो हमारी इबादतें वैसे भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती हैं, और अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा हो भी रहा होता है ना तो जब आजमाइश आती है तो फिर वो सब कुछ खत्म हो जाता है फिर, ठीक है। तो अब हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि जी हमसे जितने इबादतें हैं वो सारी हमसे रुख्सत हो जाएं, और हम इतनी मेहनत भी करी लेकिन कयामत में जब अल्लाह ताला के सामने पहुंचेंगे तो आगे से वो ठेंगा मिलेगा, तो ठेंगा मिलने के लिए तैयार है सारे के सारे भाई? तो नहीं, तैयार तो नहीं है ना। हम तो नहीं चाहते कि हम कयामत के दिन जो है वो ठेंगा दिखा दिया जाए और कहा जाए कि चलो भाई तुम जो हरकतें करके आए हो ना तुम जहन्नुम में जाओ सारे के सारे। तो भाई उसके लिए तो तैयार नहीं है ना, तो फिर उस वजह से कोई चारा नहीं है नियत की इस्लाह के बगैर, कोई चारा नहीं है हमारे पास। क्या फरमा रहे हैं, अगर दुनिया के काम में मसरूफियत की वजह से इबादत छूट रही है तो क्या वो भी रियाकारी की वजह से होगा? नहीं भाई, ये रियाकारी की वजह से इबादतें छूटती नहीं है मसरूफियत की वजह से। मसरूफियत की वजह से जो इबादतें छूट रही होती हैं ना, तो ये फिक्र की कमी की वजह से होता है, ठीक है। अल्लाह ताला के खौफ की कमी की वजह से होता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत की कमी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया की मोहब्बत भी गालिब होती है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत कम होती है हमारे अंदर, ठीक है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत अगर गालिब होती तो हम दुनिया को उस वक्त जो है ना वो छोड़ देते कि बेशक कितनी भी मसरूफियत है, कितनी भी मेरे ऊपर डिमांड है, लेकिन मैं अल्लाह ताला का हक जो है वो कजा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का हक ये है कि जोहर की जो स्टार्टिंग टाइम से लेके एंडिंग टाइम है इसके अंदर मैंने जोहर की नमाज पढ़नी है, ये मेरे अल्लाह का हक है। और ये उसी अल्लाह का हक है कि जिसने मुझे ये जॉब दिलवाई है, जिसने मुझे ये दुकान जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और जिस दुकान के अंदर ग्राहक आ रहे हैं, जिन ग्राहकों की वजह से मैं मसरूफ हुआ हुआ हूँ, ये ग्राहक अल्लाह ने भेजे हैं। तुम ये कैसे हो सकता है कि मैं ग्राहकों के अंदर मसरूफ हो जाऊं, मैं अपने कस्टमर्स के अंदर और अपने जॉब के अंदर मसरूफ रहूं और मैं अपने अल्लाह का हक भूल जाऊं जिस अल्लाह की वजह से सब कुछ मेरे पास है? तो ये इसमें एक अकल की भी कमी कमी दायरे शामिल होती है, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात हम उस वक्त भूल जाते हैं एकदम से, ठीक है। और जाहिर है अल्लाह ताला की मोहब्बत की भी कमी होती है, और दुनिया की मोहब्बत इतनी गालिब होती है कि हम समझते हैं कि जी ये जो है ना ये मेरे पास असल जो चीज़ है दुनिया, ये जो कस्टमर्स हैं, ये जो बिजनेस है, जो ये जॉब है, तो ये ज़्यादा अहम चीज़ है, और अल्लाह ताला तो फिर देखा जाएगा, ठीक है ना। अल्लाह ताला को तो ज़रा साइड पे रख सकते हैं, वो बहुत बाद में देखी जाएगी ना जो भी होगा। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की कमी होती है, तो इस वजह से ये जो है रियाकारी वाला मसला नहीं होता। ये यानी रियाकारी तो आपको बताया ना पिछली क्लास के अंदर भी कि दुनिया की मोहब्बत तो बुनियादी जड़ है, बुनियाद है, ठीक है। अब इस बुनियाद के ऊपर फिर बहुत मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं, राइट। तो इसके अंदर से ना सिर्फ एक रियाकारी यानी दुनिया की मोहब्बत की जड़ में से सिर्फ रियाकारी एक पौधा नहीं है जो निकल रहा है, बल्कि और भी बहुत सारे पौधे निकल रहे होते हैं, ठीक है। तकब्बुर का पौधा भी निकल रहा होता है, शहवत का पौधा भी निकल रहा होता है, और गुस्से का पौधा भी निकल रहा होता है इस जड़ में से, दुनिया की मोहब्बत वाली जड़ में से। उसी तरीके से जो शहवत का पौधा निकला है ना दुनिया की मोहब्बत की जड़ में से, जो शहवत का पौधा निकला है, इस शहवत के पौधे के ऊपर जो फल फूल निकलते हैं ना, बूटियां और फल जो निकलते हैं शहवत के पौधे के ऊपर, उनमें से एक जो है वो रियाकारी होता है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें उसके अलावा होती हैं, यानी और रीजंस भी होते हैं जिनकी वजह से कि हमारी इबादतें कज़ा हो जाती हैं और हम नहीं कर पाते हैं उतना मेहनत दीन के रास्ते पर। बहरहाल तो वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा, कि जो माल लौटा दिया अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर मिन अहलिल कुरा बस्तियों वालों से, ठीक है। यहाँ पर बनू नज़ैर की बस्ती मुराद है, तो बनू नज़ैर की बस्ती से जो सारा का सारा माल मुसलमानों को हासिल हुआ वो माल जो है वो अल्लाह ताला ने अपने रसूल के हवाले कर दिया, ठीक है। अफा अल्लाहु अला रसूली यानी अपने रसूल को लौटा दिया। अब ये लौटाने वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तफसीर में। फलिल्लाही वलिर्रसूली वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीनी वबनिस सबीली। तो ये जो मा अफा अल्लाहु यानी ये जो माल हासिल हुआ ना बस्ती वालों से, तो इस माल को अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर लौटा दिया, बस लिल्लाही, ये अल्लाह के लिए है, और लिर रसूली, और रसूल के लिए है, और लिजिल कुर्बा, और यानी जिल कुर्बा यानी कुर्बा वालों, कराबत वालों के लिए है, यानी रिश्तेदारों के लिए। किसके रिश्तेदार? नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार, ठीक है। वल यतामा, और यतीमों के लिए है, यानी जो भी मुसलमानों में जिसका बाप मर जाए उसको यतीम कहते हैं। क्योंकि आगे तफसीर के अंदर यतीम के बारे में कोई तफसील नहीं है, तो इस वजह से एक पॉइंट आपके सामने रिमाइंडर के तौर पे रखना है, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी ना हो कि यतीम की तारीफ क्या होती है, किसको यतीम कहते हैं। यतीम बाप मर जाने वाले को यतीम कहते हैं, जिसका बाप मर जाए उसको यतीम कहते हैं, माँ जिसकी मर जाए उसको यतीम नहीं कहते, ठीक है। जिसकी माँ मर जाए बचपन में उसको यतीम नहीं कहते, ठीक है। अच्छा, बाप मर जाने वाले बंदे को यतीम कहते हैं, लेकिन ये भी जो है ये सिर्फ 15 साल की उम्र तक शरीयत उस बच्ची या बच्चे को यतीम कहती है जिसका बाप मर जाए 15 साल की उम्र तक, उससे ऊपर यतीम नहीं कहती, ठीक है ना। यानी 16 साल का कोई लड़का हो या लड़की हो, उसका बाप मर जाए, वो शरीयत की डेफिनेशन में यतीम नहीं है। 15 साल या उससे कम में बाप मर जाए तो यतीम कहलाता है, वरना नहीं, ठीक है। माँ मर जाने वाले को यतीम नहीं कहते, हालांकि जब माँ किसी की मरती है तो ये कोई कम मुसीबत तो नहीं होती हमारे एतबार से, राइट। माँ मर जाए, माँ से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है बच्चों को, ठीक है। और बच्चे जो है वो हमारे समझ के मुताबिक तो माँ पर ही सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं ना, ठीक है। माँ ने ही खाना खिलाना होता है ज्यादातर, बाप ने तो आप बाहर जाके जॉब करनी होती है, तो माँ ने ही जो है वो उनको सुलाना होता है, उनके जो है वो छोटे होते हैं तो डायपर चेंज करना होता है, माँ ने ही खाना खिलाना होता है, माँ ने ही बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। लेकिन शरीयत जो है वो जिसकी माँ मर जाए उसको यतीम नहीं कहती, जिसका बाप मर जाए उसको यतीम कहती है। और इससे आगे अगली बात कि आपको पता है कि यतीमों के कितने हुकूक हैं, इस्लामी मुआशरे में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर यतीमों के कितने हुकूक हैं, और इसकी कितनी जो है वो बार बार याद दहानी कराई गई है हदीसों के अंदर भी, ठीक है, और कुरान के अंदर भी। जैसे यहाँ पर वल यतामा, ठीक है, तो यतीम का जिक्र किया जा रहा है ना कि इस माल के ऊपर यतीमों का हक है। तो ये यतीम कौन है? बाप मर जाने वाला यतीम है, माँ मर जाने वाला यतीम नहीं है। उसकी वजह क्या है कि यतीमों के हुकूक इतने ज्यादा क्यों बयान किए जा रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि माँ मर जाना भी बहुत बड़ा सदमा होता है, माँ का मर जाना सदमा होता है, बाप का मर जाना भी बहुत बड़ा सदमा होता है, माँ का मर जाना भी बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा सदमा होता है, गम होता है। लेकिन शरीयत के अंदर जो हुकूक आए हैं वो यतीम के लिए आए हैं, जिसका कि बाप मर जाए उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह सुनने, उसकी वजह यह है कि शरीयत के अंदर जो कफालत है ना, कफालत आपकी जरूरियात को पूरा करना, जरूरियात जिसमें खाना भी आता है, पानी भी आता है, जिसके अंदर तालीम भी आती है, घर भी आता है, राइट, कि जिस छत के तले बच्चे रहते हैं ये घर भी आता है, जो स्कूलों में या किताबों से जो तालीम हासिल करते हैं वो तालीम भी आती है, और इसके बाद तालीम से भी ज्यादा बढ़ करके जिसको तरबियत कहते हैं, ठीक है, बंदे को बंदा बनाना, इंसान बनाना, उसको इखलाक सिखाना, ठीक है, ये सारी चीजें किसकी जिम्मेदारी हैं? हैं जी, दीन एसेंशियल्स फॉर मेन की क्लास है, किसकी जिम्मेदारी है ये, किसने करना होते हैं सारे काम? बाप ने करने होते हैं ये सारे काम, किसने करने होते हैं? बाप ने करने होते हैं, माँ ने नहीं करने होते हैं, सही है। तो अगर बाप मर जाए तो माँ ने तो ये काम करने ही नहीं होते हैं, माँ की तो ये जिम्मेदारी नहीं है, और माँ की जहां ये जिम्मेदारी नहीं है वहीं पर माँ जो होती है वो एम्पावर्ड भी नहीं होती है। एम्पावरमेंट का मतलब समझता है आजकल जो ये बहुत खुसूसन चल रही है ना, एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन, औरतों को एम्पावर करो। क्या मतलब होता है इस एम्पावर करने का? एम्पावर करने का मतलब ये होता है कि वो मर्दों की मदद के बगैर अपनी सारी जरूरियात पूरी कर सकें, इसको कहते हैं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, दीन इस्लाम के यहाँ ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नहीं होती, ठीक है, कि उनको जो है वो मर्द के बगैर एम्पावरमेंट किया जाए, नहीं। दीन इस्लाम ने, जो कि हमारे बनाने वाले का मेथड ऑफ लिविंग है, बनाने वाले ने जो हमारे लिए लिविंग मेथड प्रेस्क्राइब किया हुआ है, मैन्युफैक्चरर साहब ने, राइट, क्या प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि औरतें जो हैं ये मर्दों की जिम्मेदारी है, इनकी एम्पावरमेंट कौन करेगा, इनके मर्द करेंगे कि इनकी सारी जरूरियात पूरी करनी है, बाप ने पूरी करनी है जब इसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, बाप मर जाए शादी अभी भी नहीं हुई, भाई ने पूरी करनी है, शादी हो जाएगी तो शौहर ने पूरी करनी है, ये सारी की सारी जो भी इसकी जरूरियात हैं ये दूसरे मर्द ने पूरी करनी है, इसने नहीं जा करके कमाना है, इसने कमाना नहीं है, इसको घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है कमाने के लिए, ठीक है। अगर इसके पास विरासत के पैसे आए हैं, इसके शौहर जो थे वो बहुत अमीर थे, उनका इंतकाल हो गया, उनकी दौलत इसके पास आ गई, या बाप बहुत अमीर था उसका इंतकाल हो गया, इसके पास दौलत आ गई, अब ये उस दौलत को लेकर के बाजार में नहीं निकलेगी कि जी चलो मैं उस दौलत के जरिए से जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ, उधर जाती हूँ, उधर जाती हूँ, फलाने दफ्तर कायम करती हूँ, फलाने जो है वो शॉप कायम करती हूँ, फलाना मॉल कायम करती हूँ, राइट, और फिर वहां से मैं इस दौलत को इन्वेस्ट करूंगी उन चीजों के अंदर, नहीं। अब इसके पास दौलत मौजूद है जो कि विरासत के जरिए से इसको मिली है, इस दौलत को भी किसी जगह लगाने के लिए इसको मर्दों को हायर करना पड़ेगा, मर्दों को जो है वो तनख्वाह दे देनी पड़ेगी उसी दौलत के अंदर से, ये खुद घर से बाहर नहीं जाएगी, खुद घर से बाहर नहीं जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो भी, और जब किसी के ऊपर ऐसी सिचुएशन नहीं आई है तो उसके लिए कहां से इस बात की इजाजत हो गई कि वो जाकर के जो है वो आला तालीम हासिल करे और उसके बाद फिर जो है वो आला किस्म की जॉब करे, ये कहां से आ गया? ये तो इस दौर के शैतानों का तरीका है, दज्जालों का तरीका है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जिसको वो कहते हैं, ठीक है। किसी ने एक मैसेज लिखा था कि मर्दों ने इतनी मेहनत करके ना औरतों को एम्पावर किया और उसके बाद वो मर्दों को सिखाना भूल गए कि एम्पावर्ड वुमेन जो हैं उनके साथ डील कैसे करना है, ये मर्दों को तो आता नहीं है एम्पावर्ड वुमेन के साथ डील किया करना है। तो अब क्या होता है भाई, औरत जो है वो एम्पावर हो चुकी है क्योंकि उसके पास जो है वो डिग्रियां मौजूद हैं, उसके पास जो है वो अपने पैर पे खड़े होने के सारे असबाब मौजूद हैं, और जो मर्द साहब हैं उनके उनको समझ में नहीं आती कि ऐसी औरत के साथ मैं डील कैसे करूं, कैसे मैंने इसके साथ जिंदा रहना है। तो क्या होता है घर के अंदर, फिर फसाद होता है, मुस्तकिल फसाद चल रहा होता है घर के अंदर, ठीक है ना। माएं भी जो है वो एम्पावर्ड बहुएं लेकर के आती हैं, और बल्कि अक्सर तो लड़के भी जो है उनको भी एम्पावर्ड बीवी चाहिए होती है, ठीक है, ताकि वो जो है ना वो उनके साथ मिल करके कमाई करे और खूब जो है वो और ज्यादा दौलत घर के अंदर लेकर के आए, ठीक है। लेकिन जब बच्चे पालने की बारी आएगी तो बच्चे मैं नहीं पालूंगा, बच्चे भी तुम ही पालोगी, ठीक है, तुम ही कमा करके भी लाओगी, तुम ही बच्चे को भी पालोगी, तुम ही बच्चे को भी खिलाओगी, तुम ही सारा काम करोगी, ठीक है ना। तो ये तमीज तो है नहीं मर्दों को कि जी अगर तुम एम्पावर्ड वुमेन लेकर के आए हो ना तो अब उसको उसके साथ तुम उस तरह से तो नहीं कर सकते जिस तरह से कि तुम किसी अनएम्पावर्ड वुमेन के साथ करते, ठीक है। तो ये एक शैतानी जाल है जिसके अंदर हमें फंसा दिया गया, हमें समझ में नहीं आती हमें कि करना क्या है असल में, ठीक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है तो इसके अंदर बिल्कुल इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर एम्पावरमेंट, सो कॉल्ड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन की, ठीक है ना। तो हमने बिल्कुल ही जो है ना मामला उल्टा किया है ना, यानी बिल्कुल ही जो है ना जैसे सर ऊपर होता है पैर नीचे होते हैं ना, हमने सर को नीचे कर दिया पैर को ऊपर कर दिया, बिल्कुल ही उलट कर दिया हमने पूरे के पूरे सिस्टम को। तो इसका फिर हम समरा अपने हाथों से झेल रहे हैं इसको। तो जो यतीम होता है, ये यतीम क्यों उसके सारे हुकूक होते हैं, क्योंकि जिसने सारी कफालत करनी थी इसकी, यतीम के साथ और भी एक होता है ना, एक और औरत भी होती है जिसके बहुत सारे हुकूक होते हैं, बहुत सारे उसके जो है वो यानी ख्याल रखने का हुक्म दिया गया। बेवा, हमेशा क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, बेवाएं और यतीम, यतीम और बेवाएं, यही कहते हैं ना हमेशा, क्योंकि बेवा को भी इतने ज्यादा सपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका कफील उस दुनिया से उठ गया है, उसका कफालत करने वाला, उसकी सारी जरूरियात जिसकी जिम्मेदारी थी वो इस दुनिया से चला गया है, अब उसकी जिम्मेदारी जो है वो उसके रिश्तेदार मर्दों के ऊपर आ जाती है, और अगर रिश्तेदारों के अंदर कोई नहीं है तो फिर इस्लामी मुआशरे के ऊपर उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। उसी तरीके से यतीम का भी मामला है, यतीम के इतने हुकूक इसलिए हैं क्योंकि इसका बाप मर गया है जिसने कि इसकी सारी जरूरियात पूरी करनी थी, खाने पीने से लेकर के तालीम और तरबियत तक, घर बार से लेकर के हर हर किस्म की चीज इसके बाप ने पूरी करनी थी, माँ ने नहीं पूरी करनी थी। माँ अगर मर जाएगी, सदमा बेशक इसको सबसे ज्यादा होगा, लेकिन कफालत के लिए बाप मौजूद है, बाप करता रहेगा इसकी कफालत, ठीक है, लेकिन बाप मर जाएगा तो कफालत करने वाला खत्म हो गया, अब इस्लामी मुआशरे के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आ जाएगी, ठीक है। तो अब भाई पसंद आए या ना आए, बहरहाल हकीकत तो यही है, कड़वी गोली समझ के पिए या उसको यानी मान करके इसको समझें, जो भी है, लेकिन हकीकत तो यही है। जो हम ये सारी किस्से कहानियां आपको सुना रहे हैं तो कोई मकसद है ना इसका, ऐसी कोई थोड़ी कि बस टाइम पास करना है, और सैलरी तो मिल रही है, तो क्या यानी क्या फिक्र कि आपको कोई समझ आपको गलत बात बताएं कि सही बात बताएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई, हकीकत तो यही है, अब ऐसा ही है बस। मजबूरी में औरत को ड्राइविंग सिखाना जाएगा क्या यार, ये ड्राइविंग वाली बात है यार, ठीक है यार, मजबूरी को पहले मजबूरी को डिफाइन करना चाहिए ना, और ड्राइविंग है ना, ये यानी ये एक एक, एक यानी एक टॉपिक है ये, इसके बारे में काफी तफसील है इसके अंदर, तो मैं फिर वो शुरू कर दूंगा तो खैर, मैं ना इसको हाँ में जवाब दे रहा हूँ ना मैं ना में जवाब दे रहा हूँ इसका, ठीक है, जो आपका सवाल है तो अभी इसको पेंडिंग में रखना है थोड़ा। तो फरमाया कि वल यतामा वल मसाकीनी वबने सबीली, और मसाकीन के लिए है और रास्ते के बेटों के लिए, वबने सबीली, इब्नो सबील का मतलब क्या कि रास्तों का, रास्ते का बेटा, नहीं रास्ते का बेटा से मुराद होती है मुसाफिर, ठीक है, यानी जो कि अपने घर से दूर हो, चाहे वो अमीर बंदा हो चाहे गरीब बंदा हो, यहाँ पर वो मुराद नहीं है बल्कि गरीब, बल्कि घर से दूर हो, गरीबुल वतन जिसको कहते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज की भी परमिशन नहीं है, परमिशन वर्मिशन की बात ना करें, ना अकल की बात करें, सीधी सी बात करें कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये परमिशन फतवों के ऊपर जिंदगी नहीं गुजरती है ना, कि फतवा है कि नहीं है, फतवों पर जिंदगी नहीं गुजरती, जब अपना ऐसा ही होना चाहिए कि इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करना छोड़ दे और फतवों का बस, फतवा है कि नहीं है जी, फतवा बताएं मुझे जी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अकल को इस्तेमाल करना है, ठीक है, कि भाई क्या चीज़ फायदेमंद है क्या चीज़ नुकसानदेह है, मैं फायदेमंद चीज़ को हासिल करूँ नुकसानदेह चीज़ से से परहेज करूँ, ठीक है, तो इस वजह से परमिशन का लफ्ज़ इस क्लास के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब एटलीस्ट इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर बात एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाने की बात हो रही है, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना तो फतवों से कोई काम नहीं हो सकता फिर, ठीक है, तो ये नहीं है, इस तरीके से नहीं बात बात करनी है हमने। तो फरमाया कि कई ला यकूना दूलतम बैन अल अग्निया मिनकुम, के ताकि ना आए लेने देने में दौलतमंदों के तुम में से, यानी तुम्हारे दौलतमंदों के दरमियान ये जो दौलत है ये यानी मरकूज होकर के ना रह जाए, ठीक है, बल्कि ये यतामा मिस्कीन और मुसाफिर और नबी अलैहिस्सलाम के जो ज़वेल क़ुर्बा हैं उनके दरमियान तकसीम करने के लिए है। वमा अताकुम रसूलु फ़खुज़ूहु, अब अल्लाह ताला यहाँ पर एक जनरल हुक्म दे रहे हैं जो कि हर चीज़ पर अप्लाई होता है कि जो दे तुमको रसूल सो वो ले लो, ठीक है, जो भी दे अल्लाह का रसूल, और यही ईमान भी है, पीछे ईमान की जो क्लासेस हुई हैं उसके अंदर ईमान की क्या तारीफ बताई थी कि ईमान किसको कहते हैं, जो कुछ भी नबी अलैहिस्सलाम लेकर के आए उसकी दिल से तस्दीक करना, जुबान से इकरार करना और अतात के लिए यानी तैयार हो जाना उसकी, ठीक है, यानी इरादा कर लेना अतात का, इसको ईमान कहते हैं, ठीक है, दिल से तस्दीक, जुबान से इकरार और अतात के लिए इरादा कर लेना, ठीक है, बाकी आगे जा करके अतात करोगे तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं कर पाओगे तो गुनाह मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो सब वो अमाल की बात हो रही है, ईमान क्या है, अतात के लिए तैयार हो जाना, ठीक है, जिसको इरादा करना कहते हैं हमारे तबलीग भाई, ठीक है, अच्छा, वमा नहाकुम अनहु फनतहु, और जिससे उन्होंने रोक दिया मना कर दिया तुमको, सो उसको छोड़ दो। ठीक है, तो यहां पर जो माँ इस्तेमाल हो ना, माँ आता कुम रसूल, जो भी लेकर के आए रसूल तुम्हारे पास वो तुम ले लो, यानी उसको एडॉप्ट कर लो, उसके ऊपर अमल का इरादा कर लो। वह मान हाकुम, और जो किस किसी चीज से, जिस चीज से भी वो मना कर दें, बस उससे रुक जाओ। ठीक है ना, ये है खुलासा पूरे के पूरे दीन का। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते भी रहो, अल्लाह ताला का तक्वा इख्तियार करो। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह ताला शदीद अजाब देने वाला है। ठीक है, यानी अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, जो कि तुम्हारे सामने एक सिंपल इक्वेशन रखी रखी गई है, अच्छी खासी लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक है, कि जो भी कहें वो कर लो, जो मना कर दें वो ना करो, ये लीनियर सिंपल लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद रखो कि अल्लाह ताला का अजाब जो है ना, इससे तुम अपने आप को नहीं बचा सकोगे, दुनिया में भी जलील और रिसवा होगे, और जहन्नुम का जो अजाब होता है वो तो उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। लिलफुकरा इल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, के लिलफुकरा इल मुहाजिरीना, मुहाजिरीन में जो मुफलिस लोग हैं, फकीर लोग हैं, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, वो लोग के जो के निकाल दिए गए अपने घरों में से, जिनको घरों से बेदखल कर दिया गया था, वह अमवालिहिम, और उनके अमवाल में से उनको बेदखल कर दिया गया था। ठीक है, यानी घरों में, एक तो वो घर जो होते हैं वो रिहाइश की जगह होती हैं, रिहाइश की जगहों से बेदखल कर दिया। दूसरा ये कि घर के अंदर माल असबाब वगैरह भी होते हैं, और इसके अलावा बाहर जो है वो, जैसे उस जमाने में लोग, आज भी मवेशी वगैरह भी होते हैं, फिर खेत खलियान होते हैं, फिर उसके बाद उनकी दुकानें होती हैं, उनका कारोबार वगैरह होता है, तो उन सबको अमवाल कह दिया, कि इनको जो है वो बेदखल कर दिया उनके घरों से भी और उनके इन तमाम अमवाल से भी। यबतगूना फजलम मिन अल्लाह, और अपने माल से ढूंढते आए हैं अल्लाह का फजल, सॉरी, और ढूंढते आए हैं अल्लाह ताला का फजल, यानी ये लोग जो हैं, जो कि अपने घरों वगैरह से बेदखल कर दिए गए, तो ये अल्लाह ताला का फजल ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब, यहाँ पर मुहाजरीन की बात हो रही ना, दिल फुकरा इल मुहाजरीन, के जिन लोगों को मक्का मुकरमा से बेदखल किया गया था, किसी ने इनको बेदखल किया नहीं था बाय द वे, किसी ने कहा था यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ इधर से, किसी ने बेदखल नहीं किया था भाई। वो लोग तो इनको ईमान से बेदखल करना चाहते थे, मक्का मुकरमा के मुशरिकीन तो इनको ईमान से वापस लौटा देना चाहते थे, वो कोई घरों से निकलने के लिए तो नहीं कहते थे चले जाओ इधर से भाई, क्या कहते थे, वापस आ जाओ, कुफर में वापस आ जाओ, और फिर मारते थे अगर कोई वापस नहीं आता था। तो इनको बेदखल तो अल्लाह के हुक्म ने किया था एक्चुअली, राइट, अल्लाह का हुक्म आया था ना कि अपने घरों को छोड़ करके मदीना मुनव्वरा चले जाओ, पहले उससे हुक्म आया था कि हबशा चले जाओ, राइट, तो हुक्म तो अल्लाह का आया था, जिसकी वजह से ये अपने घरों से निकले थे। लेकिन सबब कौन बने, सबब जो है वो मुशरिकीन मक्का बने, जो कि उनको ईमान से महरूम करना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया है, अल्लाह ताला ने, अगरचे कि उन्होंने डायरेक्टली ये वाला काम नहीं किया था बेदखल करने का, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका जो जो, जो क्या कहते हैं, इल्जाम, बेदखल करने का इल्जाम उनके ऊपर डाल दिया। है ना भाई, अल्लाह ताला कुल्ले शाइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है, मालिक है, अल्लाह ताला को सजती है। कहते हैं ना हमारे हजरत अक्सर ये बात बड़े प्यार से कहते हैं, हसीनों को हर बात सजती है, राइट, और वो हसीनों से हजरत की भी मुराद जो होती है ना, वो दुनियावी हसीन नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला, अल्लाह ताला से बढ़ के कौन हसीन हो सकता है, राइट, तो अल्लाह ताला हसीन है और हसीन को हर बात सजती है, राइट, वो खुद कोई फेल करे और उसका इल्जाम किसी और पे डाल दे, अल्लाह ताला को सजती है, क्योंकि भाई अल्लाह ताला के बंदे ही है ना सारे के सारे। ठीक है, अल्लाह ताला को इख्तियार है, अल्लाह ताला जो करना चाहे करें, ठीक है ना, और फिर जरा थोड़ी मजीद लॉजिक में ले जाए तो बात भी समझ में आती है, कि भाई एक बंदा है जो कि अपने परवरदिगार के ऊपर ईमान लाना चाहता है, परवरदिगार के सच्चे और अमीन रसूल की बातों का इकरार करता है, तो वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम उसको गलत काम के ऊपर मजबूर कर रहे हो। अब अगर वो तुम्हारी बात नहीं माने और तुम उसको तकलीफें पहुंचाओ, तो फिर वो अगर घर छोड़ करके जा रहा है, तो तुम्हारी तकलीफों की वजह से, तुम्हारी इस हठधर्मी की वजह से घर घर छोड़ के जा रहा है ना, तो इस वजह से घर छोड़ने का जो अमल वो कर रहा है, उसका इल्जाम दरअसल तुम्हारे ऊपर होगा, क्योंकि तुम जो है वो गलत काम कर रहे हो। ठीक ठीक है, तुम उसको जो है वो हक हक बात से रोक रहे हो और बातिल के ऊपर उकसा रहे हो, तो इल्जाम तुम्हारे ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो हकीकत में तो इल्जाम वाकई उन्हीं के ऊपर पड़ता है, लेकिन जाहिरी नजर से अगर देखा जाए तो जाहिरी नजर क्या कहती है कि हुक्म अल्लाह ताला का था कि भाई हिजरत करो यहाँ से, उन्होंने तो कोई हुक्म नहीं दिया था काफिर यानी कुफार मक्का ने। ठीक है, लेकिन ये जाहिरी नजर है। तफसील में जाए तो बात बिल्कुल सही है कि उन्हीं की इस बुराई की वजह से इन लोगों ने घर छोड़ा था। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, उखरिजो मिन दियारहिम, कि जिनको निकाल दिया गया था उनके दियार में से, कुफारे मक्का के मजालिम ने निकाला था इनको। तो वो जो निकले थे हिजरत करते हुए, तो हिजरत करते हुए वो क्या कर रहे थे, अल्लाह का फजल तलाश कर रहे थे, क्योंकि बाहर तो उनके सामने कोई असबाब नहीं थे ना, वो कोई उन्होंने जाकर कोई जॉब को थोड़ी ज्वाइन करनी थी। हम जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान छोड़कर के अमेरिका हिजरत करते हैं सो कॉल्ड, राइट, और क्या कहलाते हैं, इमिग्रेंट्स कहलाते हैं भाई, हमने जैसे माइग्रेशन करी है, इमिग्रेशन करी है, राइट। तो हम इमिग्रेशन कोई अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए करते हैं, हम तो यानी हमें तो आगे से जॉब ऑफर हुई होती है ना, इस वजह से हम इमिग्रेशन कर रहे होते हैं, या हमें जो है वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का लाइफ स्टाइल जो है वो ऑफर हो रहा होता है अमेरिका के अंदर। ठीक है, अमेरिका जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, और जो है वो पानी बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे जो कि कराची के अंदर पाकिस्तान के अंदर लगे हुए होते हैं। ये भी एक मेरा दिल कहता है, वैसे मुझे कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है इस बात की, दिल कहता है कि ये जो है ना, कि ये जो हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, बिजली नहीं आती है, इसकी हकीकत में इसकी रीजन जो है ना ये नहीं है कि बिजली और पानी की कमी है। ठीक है, ये कमी भी जो है ना ये आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है ताकि अवाम उन्नास को बदजन किया जाए, अवाम उन्नास को परेशान किया जाए। खैर असल में तो उनके गुनाह उनको परेशान कर रहे होते हैं, अगर गुनाह ना करते तो किसी की मजाल नहीं थी कि उनको परेशान कर सके। ठीक है ना, लेकिन असल में हम गुनाह करते हैं, गुनाहों की वजह से हमारे दुश्मनों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, अब हमारे दुश्मन जो है वो हमें मजीद परेशान करते हैं बिजली बंद करके। हालांकि बिजली प्रोड्यूस होने के बड़े वसाइल मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन नहीं, बिजली बंद करते हैं। पानी के भी वसाइल बड़े मौजूद हैं, लेकिन नहीं, पानी भी जो है वो बंद करते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल करके इस तरह से साजिशें करते हैं कि पानी आए नहीं, राइट। तो अब इसके जरिए से फिर वो क्या होता है, ये मुल्क जो है ना ये रहने के काबिल नहीं है, यहाँ तो ये नहीं होता, यहाँ तो वो नहीं होता, और ये जो है वो यानी छोड़ के चले जाओ उधर से, और जो रहता है वो भी जो है वो नफरत के साथ रह रहा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे अमाल वैसे हुक्मरान, तो वो अल्लाह ताला ने मुसल्लत मुसल्लत किए होते हैं। तो यहाँ पर ये लोग जो निकले थे, ये कोई बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए तो निकले नहीं थे, इनको तो आगे कोई जॉब ऑफर नहीं थी, कोई चीज़ आगे इनका इंतजार नहीं कर रही थी, तो खालिसतन ये अल्लाह ताला का फजल तलाश करते हुए निकले थे, और अल्लाह ताला की रजा, वरिजवानम वरिजवाना, ठीक है, कि चूंकि हमें हुक्म मिला है तो अब हम इस हुक्म के ऊपर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला की रजा भी मिलेगी। वयंसुरून अल्लाह व रसूलहू, और मदद करने को अल्लाह की और उसके रसूल की। क्या बात है मेरे अल्लाह की, क्या बात है अल्लाह की, राइट। एक तरफ फरमा रहे हैं वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है, राइट, और फरमा रहे हैं वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा, अल्लाह ताला जिस पर चाहता है अपने रसूल को मुसल्लत कर देता है। ठीक है ना, लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह की खातिर हिजरत करी, अपने घरों को छोड़ दिया, अपने अम्वाल को छोड़ दिया, अपने दोस्त रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने होमलैंड को छोड़ दिया जिससे इंसान को मोहब्बत हो जाती है, किस वजह से छोड़ा, अल्लाह के हुक्म की वजह से छोड़ा। अल्लाह ताला उनके बारे में क्या कह रहे हैं कि अल्लाह की मदद करने के लिए, हालांकि अल्लाह को पता है कि मुझे किसी चीज की मदद की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और इन फुकरा की मदद, यानी कोई अमीर कबीर होता, कोई ताकतवर होता तो उसकी मदद है, ये जो फकीर लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, ये क्या मेरी मदद करेंगे, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, राइट। अल्लाह की तो अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं हो सकता, कोई पार्टनर नहीं अल्लाह ताला का, लेकिन अल्लाह ताला कैसे कदरदान है, देखें अल्लाह की कदरदानी, अल्लाह ताला की कदरदानी, जो अल्लाह की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देता है जो कि मुहाजरीन ने दी थी, अल्लाह ताला उनके कैसे उनका जिक्र कर रहे हैं, यंसुरून अल्लाह व रसूलहू। यहाँ पे अल्लाह का जो लफ्ज है ये मफूल है, फाइल नहीं है कि अल्लाह ताला मदद कर रहा है उनकी, नहीं, वो अल्लाह ताला की मदद कर रहे हैं। कुर्बान जाए अल्लाह ताला के ऊपर, कुर्बान जाना चाहिए अल्लाह ताला के ऊपर, कैसी कदरदानी करता है अल्लाह ताला, राइट। तो भाई हम अल्लाह ताला को क्यों नाराजी करें, क्यों जो है वो हम दुनिया की गंद के पीछे पड़े हुए हैं, दुनिया की नजासत की वजह से हम अपने परवरदिगार को नाराज करने के की फिक्र नहीं करते, राइट। चंद छोटे छोटे जो है वो ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, तो क्या मिल जाएगा, क्या हमारे हाथ आ जाएगा, इतने कदरदान, इतने करीम परवरदिगार को छोड़ करके, इतने करीम परवरदिगार को छोड़ करके, जो कि हमारे आमाल को कैसे कैसे जो है वो उसकी कदरदानी करता है, कैसे कैसे उसको जो है वो हमें लौटाएगा, इस दुनिया में भी लौटाता है, इज्जत की, इज्जत यानी इज्जत की शक्ल में लौटाता है, और मरने के बाद जो है वो जन्नत की नेमतों की शक्ल में लौटाएगा, और हमें उसकी परवाह नहीं होती। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वयंसुरून अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह की मदद करते हुए और उसके रसूल की मदद करते हुए, उलाइका हुमुस सादिकून, यही सच्चे लोग हैं, यही सादिक लोग हैं। तो यहाँ पर हम आज क्लास रोकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों को, कोताहियों को और दुनिया की मोहब्बत को माफ़ कर दे, और हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत को उखाड़ करके फेंक दे, आफियत के साथ उखाड़ करके दुनिया की मोहब्बत को फेंक दे, और अपनी मोहब्बत और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने दीन की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दे। तो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।